वृंदारण्य में भी श्रेष्ठ है कौन? वृंदावन, जहां पर कि बंसीपट की शीतल छैया में, चंद्र की ज्योत्सना में कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ में उन्होंने राज इत्यादि किया, किंतु पंचायती राज किया, इसलिए उससे श्रेष्ठ है प्रेमामृता प्लावना, प्रेम का ये जो रस था, प्रेम रस अप्लावन कर दिया एकदम, महाबन्या लाई, बाढ़ आई, उसमें सब ब्रज को डुबा दिया, और उसमें भी उनका प्राण स्वरूप है ये राधा कुंड और श्याम कुंड, जहां पर कि और लोगों का अधिकार नहीं, केवल श्रीमती राधिका जी की, नित्य सखियों का, उनकी काय जीव स्वरूपों में भी ललिता विशाखा इत्यादि का हमारा अधिकार अधिक नहीं, इसलिए इसको यहीं पर हम। अब इन धामों में भी, अब नवदीप को भी ऐसा ही समझिए, इन्होंने बतलाया गौड़ की चिंतामणि गौ सी गौड़ मंडल भूमि, जेबा जाने चिंतामणि से सार है ब्रज भूमि बार, जो चैतन्य महाप्रभु के इस धाम को यदि सच्चिदानंदमय समझेगा और उस भूमि में रहने की लालसा पैदा होगी, तो वो वहां पर महाप्रभु का जो घाट है नगरिया घाट, वही बारकोना घाट या पास ही में है जहां महाप्रभु छोड़ करके चले गए, वहां पर डुबकी लगाएगा और निकलेगा कहां? राष्ट्रमंडल के अंतर्गत में जमुना के किनारे में वहीं पर उठेगा, डूबेगा वहां और निकलेगा यहां। और क्या एक बतलाया इसमें राधा कृष्ण पास गौरव प्रेम रसर नावे, जेवा तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। देखो कैसा सुंदर ये विचार इन्होंने प्रवेशन किया, महाप्रभु के प्रेम रूपी अगाध अनंत समुद्र में जो डुबकी लगाएगा वो राधा माधव का अंतरंग होगा, जैसे रूप गोस्वामी अपने उस रूप में है। इसलिए ये धामों में श्रेष्ठ है, यहां पर रह करके चातुर्मास से वत करें उसका एक फल, और हम माघ के महीने में तीर्थ में प्रयाग में जाएंगे, वहां पर स्नान करके वहां पर वास करके जो करेंगे उसका एक फल, दोनों का एक फल नहीं है। किसी समय में प्रयाग ने कहा प्रभो ये अपनी उपाधि आप लौट आइए, आपने मुझको कहा ये तीर्थराज और हम देखते हैं ब्रजमंडल का कोई एक छोटा से क्षुद्र भी तीर्थ हमारे पास में नहीं आया उपहार लेकर के, मैं तीर्थराज कैसे हुआ? कहे नहीं नहीं तुम तीर्थराज है, बोल तुमको नारद जी ने यह विवाद खड़ा कर दिया तुम्हारे लिए, उसका भी एक उद्देश्य है, ये नारद जी की बात तुम समझा नहीं, तुम देखो ये धाम ये तीर्थ है, तुम तीर्थों के समस्त विश्व के तीर्थों के तुम राजा है, इसलिए तुम तीर्थराज है, कि तुम हमारे घर का तो राजा नहीं, वृंदावन अपना घर है, हमारी क्रीड़ा भूमि है, उसका मालिक तुमको नहीं बनाना, ऐसी धृष्टता मत करना खबरदार, नहीं तो यदि करेगा तो तीर्थराज की उपाधि भी ले लूंगा। इसलिए इनमें कहां पर हम अभी कर रहे हैं, इन्हीं के अनुगत्य में हम लोग, अपने गुरु जी के अनुगत्य में हम लोग कहां पर यह चातुर्मास्य व्रत का अंतिम ऊर्जा व्रत हम लोग पालन कर रहे हैं, खास एक जगह में, खास विशेष जगह, जहां पर यह स्थान वह स्थान जहां पर कि इसको कहते हैं सेवा कुंज। सेवा कुंज यह नहीं जो कृष्ण की सेवा कर रही है सब, यहां पर कृष्ण ही सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये सेवा विशेष। इसके संबंध में अधिक अब आगे नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूं। तो ऐसा समझ करके हम लोगों को धाम में चातुर्मास्य व्रत और उर्ज व्रत करना चाहिए। विशेष करके ये जमुना के उस पार में बलदेव प्रभु जी का उसके अधिष्ठात्री देवता है वृंदावन के वनों में, पांच वनों के, और इधर के जो सात वन हैं, और विशेष करके ये वृंदावन, इसके अधिष्ठात्री देवी कौन है? उर्जेश्वरी जी हैं। इसी चीज को बतलाने के लिए महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से बतलाया, दामोदर व्रत। दामोदर व्रत में दामोदर जी की उपासना होती है। ये दामोदर में भी दामोदर का कुछ वैशिष्ट है। राधा जी का जो दामोदर है वो भी दामोदर है, और जो अपने कमर में रस्सी लगाकर उदीखल खींच रहे हैं और उस समय गोपालों को साथ लेकर के जले जार जो रहे हैं, वो सखाओं के दामोदर हैं, ताली बजा करके और पीछे पीछे बाह बाह कर रहे हैं और उखल को खींच रहे हैं और दोनों पेड़ों के बीच में लगा दिया। ये सखाओं के भी दामोदर है, दास्य भक्ति के भी दामोदर है। कैसे दामोदर है दास्य भक्ति का, मैंने अपने उस दामोदर अष्टक की व्याख्या में पहले बतलाया, नमामि ईश्वरम सचिदानंद, नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदाभियोलु खलाधावमानम परामृष्ट मत्स्यम ततोदुत गोप्या। नमामि ईश्वरम ये दास्य करेगा। नमामि ईश्वरम कौन कहेगा कृष्ण को? सत्यव्रत मुनि पहले प्रारंभ में उन्होंने आरंभ किया और स्तुति करते गए, अधिकार उनका बढ़ता गया क्रमशः, दास्य भक्ति के रूप में उन्होंने आरंभ किया और स्तुति का ऐसा प्रभाव, अमोघ प्रभाव उनमें दास्य भाव से सख्य भाव आया, उससे वात्सल्य भाव उनमें, उसके प्रति लालसा बढ़ी, तब परामृष्ट मत्यम तथोदुत गोप्या। कृष्ण जितने तेजी से दौड़ रहे हैं उससे भी अधिक यशोदा मैया दौड़ करके कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। क्या तात्पर्य? कृष्ण का मैया के प्रति जो भाव है और यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव है, उसमें यशोदा का वात्सल्य कुछ दो अंगुल बड़ा है, नहीं तो पकड़ नहीं सकती थी कृष्ण को, कृष्ण को बांध नहीं सकती थी। दूसरे किसी ने राम को निसिंह रूप में, किसी दूसरे रूप में नहीं बांध सका। यशोदा जी ने ही परामृष्ट पीछे से जाकर के उनको पकड़ लिया। क्यों? उनसे कुछ तेज दौड़ी, उनकी भक्ति का जो यहां पर आश्रय भक्ति है, उनका जो वात्सल्य भक्ति है, ये कृष्ण जो उसका रसास्वादन करते हैं विषय जो है वात्सल्य के, उनसे इनका कुछ और बढ़ गया वैशिष्ट है, इसलिए पकड़ लिया। महाराज जी ने बतला दिया, केवल यही तक मत समझो, स्तुति के प्रभाव से सनातन गोस्वामी टीका कर रहे हैं और हमारे गुरु जी उसकी व्याख्या बंगला में अनुवाद कर रहे हैं। नमो राधिका यही त्वदीय प्रिया, क्या पहला किसका? नमस्ते स्तु दामने फुर दीप्ति धामने तदीयोदराया था विश्वस्य धामने नमो राधिकायी त्वदीय प्रियायी नमो अनंत लीलाय। बड़ी सुंदर विशद रूप में इन्होंने व्याख्या की, जैसे सनातन गोस्वामी जी ने व्याख्या की ही, जैसे हमारे गुरु जी व्याख्या करते थे, उसी धारा में उसी लाइन में इन्होंने व्याख्या की। हम सबसे पहले उस रस्सी को नमस्कार कर रहे हैं जिसने कृष्ण के कमर में चारों तरफ से लपेट लिया, सच्चिदानंद है धाम, ये धाम है रस, समस्त धामों का मूर्तिमान ये विग्रह रस्सी है, नहीं तो कृष्ण को नहीं बांधा जा सकता था। उसके अंदर में उनके उदर की वंदना की जिसमें समस्त विश्व का धाम है, जैसे यशोदा मैया को उन्होंने विश्व रूप में दिखलाया, और तदनंतर उन्होंने कहा इसे संतुष्टि नहीं हुई, लालसा जगी, न हो कोई बात नहीं, लालसा तो जगी जाए, नहीं राधा जुगल किशोर की हमको सेवा मिले, लालसा जब भी करेंगे तो सबसे उन्नत चीज की लालसा करेंगे, नीचे की क्यों करें। यदि गुरु वैष्णव का संग हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आने का हम लोगों को सुजोग मिला, सौभाग्य मिला, रूप गोस्वामी के ग्रंथों को अवलोकन करने का हमें सुजोग यदि मिला, हमारे जैसे रूप सनातन इत्यादि षड गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तदुपरांत नरोत्तम ठाकुर इत्यादि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और विशेष करके हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के अपराकृत साहित्य को कुछ थोड़ा सा अवलोकन करने का या श्रवण करने का सुयोग मिला, उनको यदि ऐसी लालसा न हो तो वो दुर्भागा से दुर्भागा है, उनके समान जन्म लेने वाला कोई दुर्भागा नहीं। ये सब विचार हैं, सब महाप्रभु के विचारधारा में आकर के लोभ नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा पशु होगा। महाप्रभु इस चीज को दान करने के लिए आए, समर्पयी तुम उन्नत हो तो लोभ नहीं हो। हां, किंतु उन्होंने कहा भाई इस पर विशेष विचार रखना चाहिए, ससमय अधिकार का विचार होना चाहिए। अधिकार नहीं लेकर के लोभ नहीं है, उसका दिखलाएंगे मरेंगे डूबेंगे। इन्होंने यह भी बतलाया हाटे घाटे माठे बाटे, जहां तहां इस रस का विचार नहीं होना चाहिए। उपयुक्त क्षेत्र में उन्होंने ये बतलाया क्या वो बतलाए जो दोनों आदमी विचार करके जब विचार कर रहे हैं समजातीय भाव वाले ऐसे यदि हो ये विचार किया जाए। इन्होंने ये भी बतलाया तो थोड़ा सा ये मैं उसको और भी स्पष्ट कर दूं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी डर रहे थे कैसे चैतन्य चरितामृत एक सर्वजानी ग्रंथ होगा, उसमें रामा सामा जादू अनाधिकारी सब लोग भी पढ़ेंगे और कहीं इसका अनर्थ न हो जाए, इसको उचित अधिकारी ही इसका विचार करें। दामोदर अष्टक में हमारे गुरुजी ने भी ऐसा कहा अधिकार का सब समय विचार करके चलो। इसी श्लोक की व्याख्या में नमोराधिका इत्यादि में उन्होंने विचार दिया है, दामोदर अष्टक में गुरुजी ने फुट नोट में दिया है, उसको विचार करना चाहिए। तो इसीलिए परस्पर जो है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा कभी क्या करूं, यदि न लिखूं जगत इससे अपरिचित रह जाएगा, उनके प्रति अन्याय होगा, और यदि लिखूं तो अनधिकारी पढ़ करके नरक में डूबेंगे, क्या करूं। एक चित्त उनके हृदय में आया, एक विचार आया, नहीं लिखने से अनर्थ होगा, महाप्रभु की इस धारा को, रूप गोस्वामी की इस धारा को, हमारे गोस्वामी की इस धारा को जगत स्पर्श नहीं कर सकेगा, लिखना आवश्यक है, किंतु कैसे लिखूं। उन्होंने सोचा आम के बगीचे में सुंदर मधुर आम पका हुआ है और पास ही एक नीम का बगीचा है, निमौरी पकी हुई है, कौवे वहां पर नहीं जाएंगे, वहां कौन जाएगा, केवल कोकी, इसलिए इस ग्रंथ को वो लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ करके भी नहीं समझेंगे, यदि पढ़ करके वो नहीं समझ सकते हैं तो फिर लिखने में हमको आपत्ति क्या है, हमारी दोनों बात रह जाए। इसके लिए योग्य अधिकारी होंगे, अपने योग्य गुरु से और योग्य रसिक भावुक भक्तों से इसको अनुशीलन करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, और बाकी सब लोग इसको कुछ छुएंगे नहीं, कहीं जैसे ये बुजुर्ग ये सब बेकार की बात नहीं सुनेंगे, इसलिए लिखने में कोई हर्ज नहीं है, अधिकारी व्यक्ति इसको पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने उनको लिखा। इसे पूज्यपाद बामन महाराज जी ने बतलाया अधिकार का विचार करके हम लोग इसमें चलेंगे, जहां तहां घाटे बाटे बाटे सर्वत्र इसी की अनुशीलन, जहां योग्य नहीं है और वहीं पर इस चीज को बिखेर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हम लोगों के आचार्यों ने कहा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने पद गाया, उन्होंने बतलाया, उन्होंने लिखा, कहां लिखा, ग्रंथ में लिखा, अपने गीति में, मेरा जन्म बरसाना में होगा और कब मेरा विवाह होगा?
जब
मेरा नाम होगा, मेरा नाम है, अपना नाम बतलाया सिद्ध का, कमल मंजरी, अपना वर्ण, अपने वस्त्र इत्यादि का वर्णन किया, किस लिए किया? नहीं करेंगे धारा लुप्त तो हो जाएगी, अधिकारी व्यक्ति इसको श्रवण करेंगे और इसको अनुशीलन करेंगे, दूसरे नहीं, सब समय अधिकार का विचार। किंतु एक निम्न अधिकारी उन्नत अधिकार का विचार करने योग्य नहीं है। ओ ये क्यों कहते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा क्यों लिखते हैं, वो जहन्नम में जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं, अधिकारी विचार करेगा। इसलिए वो इन सब पदों को अपने भजन के लिए रूप में गाएगा। साधन और भजन में अंतर इन्होंने दिखलाया। साधन प्राकृत अभिभाव है, जब प्राकृत भाव दूर हो जाता है तब आता है क्या, भजन या सेवा, दोनों एक नहीं है, दोनों में वैशिष्ट है। साधन कहेंगे भाव अवस्था के पूर्व तक, यहां तक तो साधन में प्राकृत भाव चाहे और ना चाहे अनुसूत रहेगा, गुरु वैष्णव की कृपा से साधन करते करते भाव को लक्ष्य करके शुद्ध सत्व रगात्मिक भक्तों के हृदय से जब हमारे हृदय में संचरित होगा तो ये भाव भक्ति कही जाएगी। यही भाव भक्ति से भजन आरंभ होगा। भाव की सिद्धि होने पर जब प्रेमावस्था आएगी, जिसमें कि प्रेम स्नेह इत्यादि विकसित रूप होंगे, वहां पर प्रेम मई सेवा आरंभ होगी। वो इस जगत में नहीं, भावावस्था तक इस जगत में। भावावस्था कभी दो बतलाया हमारे भजन रहस्य में, तो महाराज जी ने सुंदर सुंदर बातों को विचारा बतलाया। तो दामोदर तक में नमो राधिकायी त्वदीय प्रियायी, यहां पर मधुर भाव है केवल, उसके लिए लालसा जगी और उसके लिए प्रार्थना, मिला कि नहीं मिला हम नहीं जानते सतव्रत मुनि को। इसलिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, शायद आप लोगों ने समझा कि नहीं, मैं नहीं समझ सकता, एक गुड़ चीज ये बतलाई, साधु संग के द्वारा ये सब चीजें प्राप्त होती है। साधु संग के लिए श्रीमद् भागवत में जो श्लोक दिया गया है दशम या एकादश स्कंद में, जो साधु संग के प्रभाव से ही नगा पर्वता इत्यादि और नीच जाति ये सब लोग तर गए, उसमें गोपियों का भी नाम दिया गया, साधु संग का प्रभाव इन पर। वो गोपियां कौन थी जो साधु संग में उस चीज को पाया? ये श्रीमती राधिका उनके काव्यों के लिए, नित्य सिद्धा के लिए, मत समझना इन्होंने नहीं बतलाया किंतु इंगित दिया, हमारे समय से वही बात, राधिका जी के लिए साधन यह नहीं है। कहा है वो जो बड़ तपस्या कीन तीन तो लोक के तारण तरण, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन तीन लोक का तारण तरण से तेरे आधीन। यह मूर्खता है, सिद्धांत इसमें नहीं है, सिद्धांत के विपरीत। राधा जी का कोई ये साधन द्वारा सिद्धि नहीं है, ललिता विशाखा रूप मंजरी इत्यादि ये नित्य सिद्ध नहीं, राधा जी की काय विवाह है, इन लोगों के लिए ये सब विचार नहीं। तब भागवत में झूठा कहा गया नहीं, ये लोग संग के प्रभाव से नित्य संग जो सिद्ध है उनके संग का, उनकी लीलाओं का कथा श्रवण करके उपनिषदमयी जो गोपियां थी और सुतिचरी और जनकपुर वाली रामचंद्र जी की प्रतिमाएं सीता, ये सब संग के द्वारा हुई, कोई जौथ की अजौथ की हुई, ये लोग संग के द्वारा, कोई रसिक गोपियों के द्वारा संग के द्वारा, कोई उनकी लीला कथाओं के माध्यम से, कोई रसिक वैष्णवों के संग से उन लोगों की यह लालसा उत्पन्न हुई और उस मंत्र को जप करके साधन भजन करके वैसा ही भजन करके तब कृष्ण के लीला में प्रवेश किया। इसलिए गोपियों में कोई साधन सिद्धा भी है, कोई नित्य सिद्धा भी है। यहाँ पर नित्य सिद्धा के लिए इन्होंने कहा मत समझना, ये साधन सिद्धा गोपियों के लिए, उनके संग से यहाँ पर पहुंची है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने बतलाया गोपीश्वर महादेव, बजरंग जी का उदाहरण उन्होंने दिया, राम में लीला में बजरंग जी यही है, ये शंकर जी ही बने। उन्होंने कहा श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तत्रापि मत सर्वस्व राम कमल लोचन। महाराज जी ने कहा जैसे उनको तत्व ज्ञान नहीं था, जो राम को ही सर्वस्व मान लिया, तत्व ज्ञान की परिपूर्णतम उनमें थी, पूर्णतम थी, किंतु ये निष्ठा का परिचायक है। इसलिए कोई अनाधिकारी व्यक्ति उनकी समालोचना करे या नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने उस अधिकार में अपनी निष्ठा दिखाई राम की सेवा में, इसलिए उन्होंने कहा जाजा अधिकारी निष्ठा परिकीर्तिता, वो निष्ठा ही गुण है, जिसमें कोई निष्ठा ही नहीं अपने आराध्य के प्रति वैसी निष्ठा नहीं तो साधन भजन में कैसे अग्रसर हो सकता है, इसलिए उनको गुण ही मानना चाहिए। हम लोग प्राकृत विचार के बहुत से लोग हैं, कनिष्ठ अधिकारी, हम समझते हैं अपने दृष्टि भंगी से विचार करते हैं कि ये उत्तम है कि कनिष्ठ है, ये विरोधी है, अपने विचार से हम उन विचारों को उद्धामन नहीं कर सकते, न गुरु को न वैष्णव को। इसलिए वहां पर मत तय कर रहता है, मत वैसी चुन में नहीं होता, इस चीज को बतलाया इन्होंने। मतभेद और मत वैशिष्ट ये अलग अलग चीज है। प्राकृत में मत भेद हो सकता है, किंतु जहां पर अप्राकृत विचार आरंभ हुआ वहां पर मतभेद नहीं होता, वहां क्या होता है वैशिष्ट। वहां पर गुरु से शिष्य का कुछ वैशिष्ट हो सकता है। हमारे लोकनाथ दास गोस्वामी और उनके शिष्य विचार वैशिष्ट है, मतभेद नहीं। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्रील प्रभुपाद में मत वैशिष्ट है, मतभेद नहीं। मूर्ख सब ऐसा कल्पना करते हैं। कुछ लोग मूर्ख ऐसे भी हैं तत्व ज्ञानहीन, हम लोगों में भी मतभेद समझते हैं, इनमें हम में उनमें भेद है। मत वैशिष्ट जरूर रहेगा, ये तो उसकी जीव सत्ता का ये विचार है वैशिष्ट, किंतु मतभेद एक दूसरी बात है। मतभेद कहाँ होगा, जहां पर कि ये चार दोष इन्होंने बतलाया। क्या दोष? भ्रम प्रमाद करना पाठ ऑफ विप्रलिप्सा, ये हम लोग बाध्य हैं, किंतु भावावस्था जाने के बाद में ये सब चारों दोष नहीं होते, वो ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए उनमें मतभेद है। हम लोगों में मतभेद होना स्वाभाविक है, ये रहेगा ही, बाध्य हैं हम लोग। किंतु देखो भाई, विचार करके अपराध न करो। यही गुरु में और वैष्णव में मतभेद है ऐसा मत समझो, उनमें मत विशिष्ट समझना। ऐसे अपराध करके बहुत से लोग मर रहे हैं, मरो मत। उन्होंने इस विचार के लिए जगदानंद का विचार उपस्थित किया। अधिक रात हो रही है तो नहीं तो कल बतलाएंगे, आज रहने दो। अरे हमको नींद नहीं चाहिए, और भी विश्लेषण करके ना, आपको भी अभी प्रसाद पाने में गड़बड़ हो जाएगा। अब यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल बतलाऊंगा। हाँ, आज यही तक रहे, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, इसकी व्याख्या में और भी कितने रत्न निकलेंगे, वही लोग समझेंगे जो सौभाग्यवान लोग होंगे, साधारण लोग नहीं समझेंगे। गौड़ीय पत्रिका में प्रबंधों को छापना अच्छी तरह से विचार करते। कुछ लोग समझते हैं कि महाराज जी रस विचार कुछ नहीं जानते, ऐसा मत समझना, भूल हो जाएगा। खूब सावधानी के साथ में इसमें प्रवेश करने की आप लोग चेष्टा करें। यदि अभी तक मतभेद का यह विचार हृदय है निकाल करके जमुना के उस पार बेल बन में फेंकाओ, यहां नहीं वृंदावन में फेंको, उधर में फेंको, और उन चीजों को ग्रहण करने की चेष्टा करो, नहीं तो बहुत विपद घटी बे विपद भारी। इसलिए आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। महाराज जी भी इनका समय 7 बजे लेने का है प्रसाद, वो बहुत देर हो गई और हम भी घर में लग गए। अब कल हम इसके विषय में जो बातें रह गई हैं हम लोग कल अनुशीलन करेंगे, विचार करेंगे। आप लोग खूब से ये अच्छी तरह से इन बातों को सावधानी से अपने जीवन में ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, आप लोगों का कल्याण होगा। इसलिए मैं गुरु जी के चरण कमलों में, महाराज जी के चरण कमलों में और सब लोगों के चरण कमलों में यही निवेदन करके, जिनके विचारों को हम लोग श्रवण कर सकें हम लोग पर ये लोग कृपा करें। कल हम लोगों का गोपीनाथ गौड़ीय मठ में पास ही श्री विग्रह प्रतिष्ठा होगी। हम लोग सबसे पहले पहले यहां हवन करेंगे और हवन के बाद में व्रत के अनुष्ठान जो होते हैं वहां पर पूर्ण करेंगे। खौल कार्य जिनको कराना है वो सब कराने लगे सवेरे सवेरे, और यहीं पर हम लोग व्रत भंग करेंगे। जलपान यहीं पर, जलपान माने बाल्य भोग की सेवा यहीं पर होगी। अधिक अधिक मत प्रसाद लेना, फिर थोड़ी देर के बाद में यहाँ तो साधारण होगा, यहीं पर पेट भर जाएगा तो वहां पर चव्य चुष्य लेहिय और पेय इत्यादि ठाकुर जी के भोग ऐसे ऐसे मिलेंगे, पछताएंगे पहले पीछे। इसलिए यहाँ पर पेट मत भर लेना, वहां जाकर के हम लोग विग्रह प्रतिष्ठा का दर्शन करेंगे वहां पर, और जो कार्यक्रम होंगे। और शाम को 4 बजे से जैसे यहाँ पर सभा हो रही है ठीक इसी रूप में विद्वत भक्ति ये सभा होगी वहां। इससे जो चूकेगा वो चूक जाएगा। बड़े सुंदर सत्र विचार होंगे, आप लोग सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और उसमें जे डूबे से फदुपनीताई चांदे, उसमें डूबने की चेष्टा करो तब वो बुझोगे। विचार करी ले चित्ते, और नहीं तो कुछ नहीं समझ, कुछ में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने बतलाया त्रिनादोपी सूत्र, अब बोलने से बहुत अधिक व्याख्या हो जाएगी, अब मैं कल इसके संबंध में बतलाऊंगा। आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पंचा कल्प पालिने जीव दुखे सदार्थाय नाम प्रेम प्रदाय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादि तरंग मध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय। अंगश्यामलिन छटाभिरहितो
मंदी कृतेंदी वरम जड्डं जागुदरो चितंग विदध तंग पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधा संत निवेशित जलभुजं ध्यायेन्दम् तवैवास्मि नदीवाम त्वयात्मन इति दिव्यं राधे तन्मयमाम यत किंकरीषु बहुत खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्याकदार्शनिधे दृशुभानुजाय तपके निकुञ्ज भवनं गणमर्हि
গতকাল আমরা ভজন রহস্যটিকে অনুশীলন করেছি। আমলোক নে ভজন রহস্য সে পাঠ কিয়া কি জব জীব কৃষ্ণ কো ভুল জাতা হ্যায় মায়া উসে পকড় লেতি হ্যায় জেসে পিসাচি কিসি ব্যক্তি কো পকড় লেতি হ্যায় ঠিক উসি প্রকার সে জীব কি গতি হতি। कब जीव कृष्ण को भूल गया? अनादिकाल से ही भूला हुआ है। संसार में पड़े हुए जीव कब ये विमुख हुआ कृष्ण का इतिहास नहीं, इसलिए अनादिकाल कहा जाता है। किंतु कोई भी जीव इस चीज को भी याद रखेंगे, कोई भी जीव वैकुंठ से अथवा गोलोक ब्रज से नहीं आया, गिर करके बद्ध नहीं हुआ। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जो उस जगत में चला जाता है वो फिर माया के बंधन में नहीं आता। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है तो ये धारणा इसलिए कि हमारी गुरु परंपरा के विचारों को, जीव गोस्वामी इत्यादि के विचारों को ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए जब ही जीव भयं द्वितीयाद अविन्मेषतस्या ईशात अपि तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायातो अबुध भक्तैक जेषां गुरु देवतात्मा। जब ही कृष्ण को वो भूल जाता है, जब ही संसारी कामनाएं उत्पन्न होते हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उस समय जीव की गति और मति विभ्रम हो जाती है। उस समय यह संसार को ही सच मानकर, इसी को प्रत्यक्ष मानकर और इसमें पतित हो जाता है, इसलिए उसको भय होता है। इसके पहले भय नहीं, उस जगत में कोई भय नहीं है, इस जगत में आने से ही तरह तरह के भय शंका। उसी लिए चार प्रकार के अनर्थ बतलाए। सबसे पहले तत्व विभ्रम या स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। पहले ही कृष्ण से विमुख हम हो जाते हैं और इसके बाद में तरह तरह की असत तृष्णाएं उत्पन्न हो जाती है, तब हृदय दुर्बल हो जाता है, तब अपराध हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने स्वरूप भ्रम को बतलाया। स्वरूप भ्रम भी चार प्रकार का बतलाया, सत्तत्व परतत्व साध्य साधन तत्व विरोधी विषय चैव तत्व चतुर्विद, तत्व भ्रम चतुर्विद। सत्तत्व में जब ही भगवान से वो चित्त हो जाता है, जखनी जीव भगवान से के विमुख हो जाए तो उसको अपने तत्व में भ्रम हो जाता है, जीव तत्व के संबंध में भ्रम हो जाता है। जब मैं कौन हूं, कोई कहता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कोई ये संसार का अभिमान लेकर के कहते हैं कि मैं यही हूं, मैं किसी का पति हूं, पुत्र हूं, भाई हूं इत्यादि, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, कभी देवता हूं, कभी गंधर्व हूं, कभी रंक हूं, गरीब हूं, दरिद्र हूं, कभी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, जिस योनि में जन्म ग्रहण करता है उसी को वो मान लेता है कि मैं हूं। और कुछ कहते हैं ये नहीं, ये भ्रम हुआ है, ये असल में ब्रह्म ही है। तो भ्रम किसको हुआ? जीव को। तो भ्रम होने के पहले ही जीव था ना, भ्रम होने के बाद में ब्रह्म जीव हुआ? जी गोस्वामी ने उन लोगों से पूछा, भ्रम किसको? जीव को हुआ है ना ब्रह्म को? जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो लोग कहते हैं जीव नाम की कोई चीज नहीं। तो फिर भ्रम किसको हुआ? तो ब्रह्म को। तो ब्रह्म को भ्रम हुआ तो ब्रह्म को भ्रम होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, उसको तो कभी भ्रम नहीं हो सकता। तो किसको हुआ? जी गोस्वामी कहते हैं यदि कहो जो ब्रह्म को हुआ तभी तुम गए, और यदि कहो जो जीव को भ्रम हुआ तभी तुम्हारे, जो कुछ भी तुम कहो तुम्हारेगा। इसलिए तुम्हारा विचार ये गलत है, ये भगवान का अंश है। कैसा अंश? विभिन्न अंश है। कैसे विभिन्न अंश है? जब ब्रह्म स्वरूप शक्ति से अपनी अनंत शक्तियों से समन्वित होते हैं, युक्त होते हैं, उस समय उनका जो अंश होता है उसको स्वांश कहते हैं। ठीक से समझो, जखन परब्रह्म निजे स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति इत्यादि अनंत शक्ति द्वारा युक्त थाके, तखन तहार जे अंश है ताके बोले स्वांश। जे रकम राम, बलदेव इत्यादि अवतार सब। और जखन ब्रह्म निजेर एक अघटन घटन पटेशी शक्ति द्वारा एमन करें जे तहार तखन शक्ति गुली के एक लीन कर दें, और मात्र तटस्था शक्ति संगे युक्त हो जाए, तखन ओई जे अंश ताके बोले विभिन्न। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वंश जेखने बोले तखन केवल शक्ति द्वारा ही यहाँ हुई तटस्थी शक्ति थे जीवर प्रकाश, एटी बोलते पारे जाए। आर कृष्ण से प्रकटित हुई एवटा बोला जाए, तखन की बोला जाए? ये विभिन्न अंश। बिना कृष्ण संगे युक्त हुए तटस्था शक्ति थे केवल जीव होते पारे ना, तार मध्य इच्छा शक्ति कोथा थी आसबे। एक जन इच्छा शक्ति होचे निजे कृष्णेर, और तार मध्य लगे गलो कि बोलें जैसे अमार संगे केवल तटस्था शक्ति युक्त हो अर्थात जीव शक्ति, और तार थी के जे अंश हलो तखन हलो विभिन्न अंश। एक के बोलचे ने ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, आर बोलें कि तटस्था शक्ति परिणति होचे जीव, एर मध्य ही सामंजस्य करते हैं। कृष्ण आछेन किंतु तार शक्ति द्वारा, जे रकम है उदाहरण दिलेन, उदाहरण मृगगंध, मृग अमृत गंध कस्तूरी, कस्तूरी थी के तार गंध पृथक न, कस्तूरी मन निजे पर तत्व के, आ तार गंध मन तार शक्ति, कोनो दिन अलग होबे ना, किंतु एक रकम ऐसा चिंता कर ले अलग हुआ थे, पृथक भी है। कैसे पृथक है? कस्तूरी तो यहां रख दो और उसका गंध सब जगह में फैल जाएगा, कस्तूरी तो नहीं गई वहां 25 हाथ दूर, 26 हाथ दूर, 10 गज 15 गज दूर है, तार गंध तार चले जाते, किंतु कस्तूरी जेखने सेखने, एक जन तार के पृथको आछे अपृथको आछे। सूर्य तहार रश्मिगण, तहार ताप, जल तहार सरलता, एक में प्रत्येक वस्तु में दे तहार एक ही स्वाभाविक एक जिनिस आछे, शक्ति आछे। ताप थेके पृथक ना ताप थेके अपृथक, ए चिंता करते पारा जाए ना। एक जने चैतन्य महाप्रभु बोलें अचिंत भेद अचिंत अभेद। তাহলে তোমরা বলছো কি রকম শাস্ত্রে কি রকম লিখা গেছে যদি বুঝতে নাই পারা যায়, বলছে নিজে বুদ্ধিতে বুঝা না যাবে না, এটা কিসে বুঝে যাবে, কেসে সমঝা যায়গা? शास्त्र बुद्धि गम्य, परंपरागत विचार गम्य, गुरु परंपरा ठीक है, जे अमनाय धारा में विराज छे ओसत द्वारा गम्य, ए छड़ा नहीं ठीक है गम्य न, एक जन अचिंत, अचिंत मैंने को चिंता ही करते पर जावे ना, ताले बोला हलो के मन कैसे वो कहा गया कि ये ठीक नहीं, इसलिए है कैसे समझा जाएगा, ये शास्त्र बुद्धि गम्य। और विशेष करके परंपरागत जो हम लोगों के विचार हैं उसके द्वारा जाना जा सकता, ऐसे नहीं जाना जा सकता। ये जो अभेदाभेद जो बतलाया तत्व जीव और ये जड़ जगत, ये शक्ति से शक्तिमान का भेद और अभेद, शक्ति से जीव से नहीं केवल, उस शक्ति के अंतर्गत में जीव भी आ जाता है, ये जगत आ जाता है, तो जगत के साथ में जीव के साथ में ब्रह्म का अचिंत भेद और अभेद है। निम्बार्क लोगों का भी ऐसा है, उनका कहते हैं स्वाभाविक भेदाभेद और हम लोगों का अचिंत। स्वाभाविक में थोड़ा सा ये बहुत गहन विषय है, स्वाभाविक अचिंत स्वाभाविक भेदाभेद माने क्या है, क्या उसको कहते हैं, हमारा वहां से वैशिष्ट्य क्या है, भेद क्या है हम लोगों का निम्बार्क संप्रदाय से। निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं कि ये जीव और जगत सब कृष्ण से ही परतत्व से प्रकटित हुआ है। हमारे जीव गोस्वामी इत्यादि तत्वाचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, ब्रह्म भिखारी हो जाएगा, ब्रह्म से यदि निकला है इसलिए ब्रह्म से नहीं निकला, ब्रह्म की शक्ति द्वारा ये प्रकटित हुआ है। उदाहरण दिया चिंतामणि से कोई चीज प्रसूत होती है, चिंतामणि अविकृत रहती है, उसका विकार नहीं होता, किंतु उससे निकल जाता है बहुत सही। उदाहरण के लिए हमने देखा है हमारे घर गांव में एक तेली रहते थे, बहुत अच्छा आदमी था, वो कमरी कमच्छा में गया, आसाम में गया और वहां से मंत्र सीख करके आया। हम लोग का वो काका लगता था, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो गांव में आते थे तो हम लोग बच्चे जितने थे गांव भर के उसको पकड़ लेते थे, चाचा जी मिठाई खिलाना है, जिलेबी हम खाएंगे, अच्छा जिलेबी खाएगा ठीक, तो वो ऐसा ऊपर में देखता और ऐसे ताली बजाता, मिट्टी ले लेता और ऐसे कर करके हाथ ऐसा कर देता है, जिलेबी अकबर धारा प्रवाह से गिरने लगती और हम लोग उठाते लगते, उठा करके मुख लेते देते दे, देखे कुछ नहीं, क्यों गिर रही है, हम जिलेबी देख रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने पकड़ा, चाचा जी हम लोग रुपये लेंगे आपसे, नोट लेंगे, नोट लेगा तू, अच्छा ठीक, बस ऐसे किया और ऐसे करके से बस ऐसे किया और नोट ऐसे हाथ का नोट झट 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 गिरने लग गया, और जब हम लोग पकड़ने जाए तो देखा जी कुछ नहीं। एक दिन की बात है, एक गांव में बारात आई और बारात में पूरी कचौड़ी लड्डू इत्यादि बना था, शाम को वो बारात आनी है, ये उसके घर गया, अभी बारात नहीं आई थी या बारात आ गई थी, अभी भोजन नहीं हुआ था, ये महाशय जी गए उनसे कहा जे महा प्रभु हमको बड़ी भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दे, तो खाने के लिए कैसे दे दे, अब तो तुम्हारे घर में लड्डू पूड़ा पकवान ये सब बना हुआ है, हमको थोड़ा सा दे दो कम हो जाएगा, नहीं भाई जब तक बारात नहीं जिमेगी तब तक बर और यात्री नहीं जिमेंगे हम नहीं देंगे, नहीं देगा तो देखो इसको तुमको पछताना पड़ेगा, अरे जाओ जाओ तुम, वो चला गया, थोड़ी देर के बाद में देखा ये भंडार में कुछ नहीं। ऐसे ही जाति साधारण रूप में मंत्र के द्वारा देखा जाता है, मणि के द्वारा देखा जाता है, किसी चीज को प्रसव करके भी उसका विकार नहीं होता, इसी तरह से भगवान की शक्ति द्वारा भगवान से जीवे ये सब अखिल विश्व जीव और जड़ जगत निकला है, किंतु भगवान से भेद भी है, अभी ब्रह्म विकृत नहीं होता, इसलिए शंकराचार्य ने इस सब मतों का खंडन किया था। हमारे जीव गोस्वामी ने उनके सब विचारों को खंडन कर दिया, यहाँ तक कि निम्बार्क इत्यादि के विचारों का भी उन्होंने खंडन किया है। बलदेव विद्याभूषण ने पीछे से गोविंद भाष्य में इन सब विषयों का प्रतिपादन और विरोधी मतों का खंडन उन्होंने किया है। तो अपने स्वरूप में भ्रम नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए मैं कृष्णदास हूं, जिवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अब कृष्ण को भूल करके हम माया के दास में पड़े हुए हैं, माया के दास का मैं राष्ट्रपति हूं, माया का दास का प्रधानमंत्री हूं, माया का दास कहां, मैं तो सबका मालिक हूं, निद्रा के वश में, अपने लस्ट के वशीभूत, अपनी कामनाओं के दास बने पड़े हैं, प्रतिष्ठा के दास, जीवन मरने के लिए बाध्य, उनके हाथ में कुछ नहीं केवल अभिमान। इसलिए कहते हैं अपने तत्व में यह बात ठीक रहना चाहिए कि हम कृष्णदास हैं, कृष्ण को भूलने से हमारी ये दुर्गति है, ये हमारा निवास नहीं है, दो दिन के लिए किराए पर भगवान ने दिया है यह शरीर और मन, यदि इसका शुद्ध व्यवहार करके भगवान का भजन करके चले जाओ तब तक तो ठीक है, और जिन लोगों ने इसका सदव्यवहार नहीं किया जबरदस्ती निकाल लेंगे और इस शरीर से निकाल करके पार कर देंगे जबरदस्ती, और दंड स्वरूप ये कहेंगे एक सुई और धागा भी नहीं ले जाएगा इस जगत से, एक केस भी शरीर भी कुछ नहीं जाएगा, ऐसा वो दंड देगा, रोते कलपते रह जाएंगे, कोटि कोटि जन्म हमारा बिगड़ जाएगा, इसलिए इस जन्म का एक